राम।
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 मई 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण
नारायण राम।
मतलब आप पूछ रही कि सुबह आई थी, सुबह बात हुई है, उसमें सिद्ध तत्व तो निरपेक्ष है, कर्म निरपेक्ष, परंतु साधन कर्म निरपेक्ष कैसे यह स्पष्ट नहीं हुई। हाँ वो कान क्या मरा जितने डिविजन करने लगा हूँ थोड़ा विस्तार हो जाता है, फिर पस देखो तो घड़ी देगी तो घड़ी तो आगे जाएगी, समय ज्यादा हो गया फिर संघार कर दिया। ये बात तो विस्तार से बताओ अच्छी तरह से बढ़िया देती है, तो कोई पूछने वाला हो तो क्या कहो किस हो गया ये तो ही कहता हूँ। मैं तो अपने दांत भी चलाता हूँ अपनी छाती की जोर से, हाँ हाँ यो कोई पूछते ही नहीं, कोई उतरते ही नहीं, कह रहे हो क्या करो, कह रहे उतर कर देख रहे पूछ
ना, हम समझते भी नहीं।
नहीं आप सुबह नहीं समझे
जी,
समझे क्यों नहीं है, समझते नहीं, ये बात मेरे समझ में कम आती है। मैं अपनी दृष्टि से सरल करके बात बताता हूँ, गहरी से गहरी बात सरल रीति से हरेक आदमी समझ रहे इस रीति दृष्टि कहता हूँ। मैं ऐसा ख्याल रखता हूँ टीका लिखते समय भी संस्कृत शब्द ज्यादा न आ जाए, सरल आवे, सरलता से लोग समझे, ये मेरा ध्येय रहा है लिखने में कहने में, ये ख्याल रहता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, सब भाई बहनों की तरफ से कहता हूँ कि सब भाई बहन समझ सके, ऐसी दृष्टि रखता हूँ। अब कर पाता नहीं हूँ, ध्येय के अनुसार आदमी चलता है पर चलता चल नहीं सकता, खेत में ही काम करे तो आठ दिन में इतना काम करेंगे तो अंत में कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है, हर एक उद्देश्य हो उसके कारण में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। तो आप लोग पूछ लिया करो किस किस अंश में कौन सी बात नहीं समझे, वह पूछो दोबारा कहें, बहुत बढ़िया रीति से। नारायण 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 नारायण। देखो एक सिद्धांत बताऊं आपको, जैसे अद्वैत सिद्धांत में विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुमुक्षुता ये साधन चतुष्ट संपन्न हो तब वेदांत का अधिकारी होता, फिर वेदांत को सुने तो कैसे कहते कि श्रवण मनन निधिध्यासन, ये चार तीन ही हुए, और इसके बाद तत्त्वम पदार्थ का विवेचन, तो तत्त्वम पदार्थ का विवेचन में विवेक और फल में बताया है, जहां पर ज्ञान का वर्णन है वेदांत ग्रंथों में, वहां ज्ञान का कारण, ज्ञान का स्वरूप और ज्ञान का फल और ज्ञान की अवधि, वैराग्य का कारण, वैराग्य का स्वरूप, वैराग्य का फल और वैराग्य की अवधि, उपरसी, उपरसी का कारण, उपरसी का स्वरूप, उपरसी का फल, उपरसी की अवधि, ऐसे वर्णन आया है। तो वैराग्य ज्ञान के ऊपर से ऐसे वर्णन आया। अब इसमें थोड़ा गहरा उतर कर देख रहे तो ये आरंभ होता है विवेक से और अंत में विवेक ही होता है। पहले सत असत का विवेक चलता है, फिर जीवात्मा और जो परमात्मा की एकता में विवेक काम करता है, विवेक, तो अंत में विवेक होता है। जो साधन आरंभ होता है वही आरंभ अंत में होता है, अंत में समाप्ति होती है उसी में। ऐसे कर्मयोग में योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो सुमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, 48वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, देख लो। इसमें कहा योग में स्थित और कर्म करो। योग नाम है समता का, पहले ही पहल समता में स्थित कैसे होगा, ऐसे पहले ही पहले विवेक कैसे होगा, भक्ति का क्या कर सर्व कर्माणि मनसा, भगवान के सर्व सब समर्पण करके और भगवान यद करो मदर्पण मेरे अर्पण करो, तो अर्पण करने पर क्या अर्पण पूरा हो जाता है। अर्पण का उद्देश्य होता है, निष्काम भाव का उद्देश्य होता है और अंत में निष्काम भाव होता है। निष्काम के जहाँ लक्षण कहे हैं, गुणातीत होने के लक्षण कहे हैं, तो गुणे नान्य गुणे भी करता न, गुणों के सिवे अन्य करता नहीं है, यहाँ से आरंभ होता है। और गुणातीत उच्चते, गुणातीत वो कहलाता है, तो गुणों के सिवाय करता नहीं है, आत्म अकर्ता है, यहाँ से साधन शुरू होता है और अंत में गुण ही अलग रह जाते हैं, आप अकर्ता अपना रह जाता है। साधन जिस दृष्टि से शुरू किया जाता है, साधन की समाप्ति वहां ही होती है, ये एक सिद्धांत है। तो जब आप कर्ण निरपेक्ष साधन है, इसमें पहले से ही कर्ण निरपेक्ष भाव होना चाहिए, नहीं तो कर्ण के साथ संबंध विच्छेद आपका नहीं होगा। कर्ण की बहुत आवश्यकता रहेगी, कर्ण की सहायता से ही आप साधन करते हो, तो अंत में कर्ण का त्याग कैसे होगा, उसके बिना आप साधन ही नहीं होगा। तो कर्ण निरपेक्ष उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, विचार होता है, वो कर्ण निरपेक्ष होता है ऐसा बात नहीं है, लक्ष्य होता है उसकी सिद्धि हो जाती है। कहीं भी कोई लक्ष्य वेधन करता है तो लक्ष्य वेधन करता है उसमें बाण चलाता है, अगर बंदूक चलाते हैं तो बंदूक चलाते हैं, बंदूक के ऊपर एक छोटा सा इतना सा होता है लोहा, उसको माखी कहते हैं, ऐसे वो ठीक माखी मिला रहे वहीं तोड़ सके, वहीं गोली जाएगी वो, और गोली दो तरह जाती है, एक सीधी जाती है, एक ये घूम करके जाती है, बड़ी दूरी तो गलत जाती है, उसमें वो बंदूक होती है जिसमें गोली जो चक्कर होता है, और चक्कर जाती बहुत दूर जाती है और भेदन करती है। तो माखी मिला करके ठीक करके लियो, एक आंख बीच करते थे, एक ठाकुर थे जिसकी आंख एक ही थी, तो हमारा बढ़िया बड़ा बढ़िया चित्र बनाया, वो एक आंख मिचा दीजिए एक आंख से कर दिया तो बढ़िया चित्र हो गया। तो वो ठीक तरह से मारना जाता है, तो लक्ष्य पहले वेदन करता है ठीक वहां पर, और वहीं गोली लगती है अंत में, तो पहले आरंभ होता है वही अंत होता है, अंत होता है वही आरंभ से पहले से होता है। तो कर्ण निरपेक्ष साधन कब होगा? पहली तब तो कर्ण निरपेक्ष है, ये दृढ़ता से आदमी समझ लिखी तरह से प्रकृति से रहित है तो ये उद्देश्य बनेगा, प्रकृति से रहित साधन नहीं बनेगा। कैसे करेगा वो? मन बुद्धि लगाए बिना कैसे करेगा? और अभ्यास होगा वो प्रकृति की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। हो सके तो पहले बताओ मेरे को पीछे, अभी न बोले कृपा करके अंत में मेरे को बताओ, हम बात करेंगे। तो योगस्थ कुरु कर्माणि, अब कर्म करो योग में स्थित होकर करो। तो योग में स्थित पहले हो, योगस्थ सन कर्माणि कुरु, यह अर्थ होगा योग में स्थित रहते हुए ही कर्म करो। योग किसको कहते हैं भाई? योग का क्या मतलब है? सिद्धि से जो समूभूतः फलं त्यक्त्वा, योगस्य कुर्वाणी संगं त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके। तो आसक्ति का त्याग करके फिर सिद्धि सिद्धि में सम हो करके, और फिर समता का नाम है योग। अब समता का नाम योग है, उसमें पहले स्थित हो जाए तो फिर क्या प्राप्त कर देगा? पीछे किसी प्राप्त क्या करेगा? तो पहले समता में स्थित होने का उद्देश्य होता है कि राग द्वेष नहीं करना है, हर्ष शोक नहीं करना है, सिद्धि सिद्धि में सम होता है, सिद्धि सिद्धि समभूतवा सम होकर के करो। तो होकर के करो तो हुआ नहीं है, ये सिद्ध होती है। योग में स्थित नहीं हुआ है, उस वास्ते योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित हो गए कर्म कर। तो अपने उद्देश्य में योग में स्थित हो, उद्देश्य पहले रखो। ऐसे कर्म निरपेक्ष साधन करना हो तो पहले खूब अच्छी तरह से उस विषय को समझो कि वास्तव में तत्व कर्म निरपेक्ष है। तो कर्म की अपेक्षा पहले उसकी योग्यता न होने पर कर्म की अपेक्षा होती है, तो कर्म को लेकर चलो। परंतु कर्ण निरपेक्ष कहने का तात्पर्य कर्ण का भरोसा नहीं है, कर्ण के आधार पर नहीं चलना है, कर्ण के सहारे पर नहीं चलना है, कर्ण को साथ लेकर के नहीं चलना है। ये उद्देश्य होता है पहले, तब कर्ण निरपेक्ष साधन होता है। तो कर्ण निरपेक्ष होता है वो योगस्थ कुरु में समता होकर के, समत्व योग उचित समता को रख करके। योगस्थ सन योग में स्थित रहता रहता ही कर्म करो। योग क्या है? समझ तुम योग उच्चते, तो पहले करते करते अंत में समता आवेगी। ऐसे नान्यं गुणे भ्य करता रंगे राजस्थान उपस्थिति गुणे भ्यस्त परम व्यक्ति मदभावं शोधि गच्छति। तो मदभावं गच्छति गुणे व्यस्त परम व्यक्ति, उनसे नान्यं गुणे भ्य करता रंग, करता है गुणों के सिवाय कोई है ही नहीं। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा, सब प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं होती है सभी। प्रकृति गुण कर्माणि, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे ही, प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म होता है। ऐसे जगह जगह प्रकृति के द्वारा ही कर्म होता है। आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, कर्म नहीं है, कोई कारक नहीं है। कारक जितने हैं क्रिया की सिद्धि के लिए है, और क्रिया से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। ये सिद्धांत वेदांत का डिंडिम घोष है कि क्रिया के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। क्रिया करोगे तो प्रकृति के साथ में लेकर ही करोगे तो कैसे करोगे? क्रिया और पदार्थ दोनों से अति तत्व है, अति तत्व तो पहुंच रहे, हम क्रिया में पदार्थों में फंसे हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य गुणातीत होगा, और पहले गुणातीत कैसे हो जाएंगे? ऐसे कर्ण निरपेक्ष हमारा साधन होगा आरंभ, तभी उसमें अंत में कर्ण निरपेक्ष होगा, नहीं तो कर्ण निरपेक्ष कैसे होगा? अब इसमें कोई शंका तो कर लो, अभी कर लो, फिर आगे छेड़ू पड़ता तो ठीक है। देखो बीच में बोलो बस, मैं कहूँ तो शंका बोलो, शंका नहीं मत मत बोलो। तो योग में स्थित होकर कर्म करना इस तरह से ही कर्ण निरपेक्ष तत्व है, और कर्ण निरपेक्ष तत्व की प्राप्ति कर्ण निरपेक्ष होने से ही होगी। कर्ण सापेक्ष हो कर्ण निरपेक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे हो जाएगी? कर्म सापेक्ष चलेगा, उसे कर्ण निरपेक्ष तत्व कैसे मिलेगा? उसे कर्ण की सहायता रहेगा तो कर्ण को तो आदर देगा, तब कर्ण को रख करके गुणातीत कैसे होगा? कर्ण निरपेक्ष कैसे होगा? तत्व है कर्ण निरपेक्ष, तो ये साथ पहले समझ लेना चाहिए कि ऐसा तत्व है। अब उसी में स्थित हो कर्म करना है तो उसमें स्थित क्या होता है, उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। हमारे कर्ण से काम नहीं होगा, कर्ण के द्वारा वो नहीं होगा, कर्ण से अतीत तत्व उसको प्राप्त करना है, क्रिया से अतीत तत्व को प्राप्त करना है, कर्तृत्व अतीत कर्तृत्व नहीं है वहाँ, नान्य गुणे भी करता रहो, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य प्रकृति द्वारा है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्यते, इति मत्वा न सज्यते में अर्थ ये हो गया कि वो गुणों से अतीत हो गया। मत्व क्यों कहा है, मान कर चले ऐसा कि गुणों के अतीत तत्व है वो, वहाँ कर्ता नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, उसके लिए साफ शब्द कहा है, बहुत विलक्षण शब्द। 31वां श्लोक, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित होता हुआ भी आत्मा कर्ता नहीं है तो फिर कर्ता कौन होगा, पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते, प्रकृति में स्थित रहता ही भोगता बनता है, तो प्रकृति में स्थित होता है वो शरीर में स्थित नहीं है। कैसे, कोई काम करता है समष्टि शक्ति समष्टि प्रकृति में स्थित होकर कोई कर्म करता है, कोई भोगता है समष्टि शक्ति में स्थित होकर के, समष्टि प्रकृति में स्थित होकर के। मेरी बात को फिर दोबारा समझें, फिर ध्यान दें, मानो अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, अयम आत्मा अव्यय है और परमात्मा है साक्षात, क्योंकि अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादि होने से निर्गुण से दो विशेषण क्यों दिए, कि प्रकृति पुरुषों से वह वृद्धि अनादि उभौ अपी, प्रकृति पुरुष दोनों अनादि है, कार्य करण करते हेतु विकार से गुणास्ते विद्यु हेतु प्रकृति, विकार गुण क्रिया सब प्रकृति से होती है और पुरुष का सुख दुख का नाम हेतु से, सुख दुखों के भोगतापन में हेतु है पुरुष। अब उसे कह दिया कि प्रकृति स्थो भी शरीर स्थो भी ना करो तीन लिप्त, शरीर में से करता नहीं है, लिप्त नहीं होता है तो कहाँ लिप्त होता है, प्रकृति में से तो बिना शरीर में से तो कैसे लिप्त होगा, कैसे करता होगा वो, तो ये सिद्धांत है, पर समझना चाहिए कि वास्तव में आत्मा न करता है न लिप्त होता है, लिप्त नहीं होता इस वास्ते हमें फल की इच्छा नहीं रखनी है, तो नहीं रखनी है ये सिद्धांत होगा, ये मान्य होगा, ये लक्ष्य होगा, ये उद्देश्य होगा। पहले कर्मों के फल का त्याग हो जाएगा तो आरंभ करते ही गुणसित हो गया वो, तो ऐसा नहीं होता है। श्रवण करो, मनन करो, निर्ध्यासन करो, उसमें क्या था, श्रवण क्या है कि ग्रंथों का तात्पर्य अद्वैत में है ऐसा समझे पहले, वो श्रवण होता है, कूड़ा कानों से सुनना श्रवण नहीं है। वेदांत ग्रंथों का तात्पर्य अद्वैत में है ये समझना श्रवण है, और उसी का मनन करना, फिर निर्ध्यासन करना, विजातीय वृत्तियों का प्रवाह रोक करके सजातीय वृत्तियों का प्रवाह करना, तो सजातीय वृत्तियों का प्रवाह के लिए गुणाते कैसे होगा, तो पहले ये कर्ण होगा, पहले कर्ण होगा, फिर कर्ण निरपेक्ष सिद्धांत होगा, कर्ण निरपेक्ष मान्यता होगी, कर्ण निरपेक्ष धारणा होगी, उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा, लक्ष्य पूरा बार आरंभ में नहीं होता है। मैंने कह दिया खेत में काम करना है तो आज दिन में इतना सा काम करना है, ऐसा होने पर अंत में खेत काम होता है, पर पहले के इतना आज दिन में कमी नहीं करना है ये चलना है। खेत में क्रांति करते प्रयास होती, प्रयास यहाँ से शुरू किया ये वहां तक प्रयास चलेगी, तो वो प्रयास वहां चलाना है, वहां जाना है, मैं शुरू यहाँ से करना है, घास काटता हो तो यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटते काटते करते प्रयास पूरी वहां होगी, अंत में जाते हुए हल चलाते तो यहाँ से चलाते है, यहाँ जाते थे तो हल वहां तक जाएगा, वहां से पीछे लौट कर आएगा, तो लक्ष्य वो होता है पहले, पीछे कार्य सिद्ध होता है। सब छोटे बड़े कार्य जितने होते हैं, रसोई बढ़ाते हुए रसोई बनाते हैं, ऐसा रसोई बन गई रसोई बनता है, तो बनाते हैं रसोई बन रही है, बनते बन गई रसोई, रसोई बनानी है, हमारी रसोई बनाना ही है उद्देश्य है। ये लक्ष्य पहले होता है, पीछे रसोई बनाने में आरंभ होता है। ऐसे कर्म निरपेक्ष है, ऐसा तत्व समझ कर कर्म निरपेक्ष ही साधन करना है, कर्म की अपेक्षा नहीं रखना है। जहां तक हम कर्म निरपेक्ष नहीं हो तब तक कर्म की सहायता लेनी है, कर्म का त्याग करने के लिए, न कि कर्म को साथ रखने के लिए। चलते हैं तो जूती पहन कर चलते हैं, पर फिर से जूती के सिर पर रखते हैं, जहां तक चलता है जूती है, फिर जूती छोड़ देते हैं, ठीक चल जाता है। तो लक्ष्य में पहले कर्म निरपेक्ष भाव चाहिए, तब उसका त्याग होगा, नहीं तो त्याग नहीं कर सकोगे। कर्ण से ही होगा तो कर्ण का त्याग कैसे करोगे, कर्ण की सहायता पर साधन ही नहीं होगा तो कर्ण का त्याग कैसे होगा। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। और सिद्धि वही होगी जो आरंभ में लक्ष्य होगा, उसी के अंत में सिद्धि होगी। योगस्थ कुरु कर्माणी और समत्वम योग उच्चते, योग में स्थित होकर कर्म करो। तो योग में स्थित हो गया तो कर्म करने की क्या जरूरत रही। योगस्थ सन कर्माणी गुरु, योग में स्थित मानो समता में, समता विषमता और छोड़ जाओ। कैसे छोड़े कि संग त्यक्त्वा फिर नहीं कैसे करे कि सिद्धि सिद्धि स्वभूत्वा, सिद्धि होना सिद्धि सम होकर करो, होकर करो जो सिद्ध होता है, समता में नहीं है स्थित। नहीं तो होकर क्यों करो, सिद्धि से तो भूतवा क्यों कहते, सिद्धि सिद्धि स्वभूत्वा संग त्यक्त्वा। हाँ जी,
दो बातें,
हाँ संगम त्यक्त्वा सिद्धि सिद्धि भूतवा, तो संगम त्यक्त्वा और भूतवा दोनों बात बनती नहीं। जब योग में स्थित है या योग में स्थित और कर्म करो तो योग में पूर्ण स्थित होने पर तो सिद्धि हो जाती है। समत्व योग उच्चते, समता समत्व लक्ष्य होता है, उसका उद्देश्य होता है। वो पहले से ही समता के लिए काम करते हैं। आर्मुक्षोर मुने योगम कर्म कारण उच्चते, अरुक्ष होता है उसके कर्म कारण है। योगा रूढ़ से सत्य ही वसाना, योगा रूढ़ होने के शांति होती है, त्यागा शांति रंतम शांति होती है। शांति में भी नहीं फंसे तब वो गुणातीत होता है, तब योग में स्थित होता है। तो फल में पदार्थ में नहीं, साधन में भी राग होगा तो तत्व तत्व नहीं होता। गुण संग सुख संगे न बद्धाती ज्ञान संगे न सत्वगुण है, जो सुख के संगे और आसक्ति ज्ञान की आसक्ति से सत्वगुण भी बांधता है। आप साधन सत्वगुण से ऊंचा कहाँ से लाओगे। तत्व सत्वम निर्मलत्व प्रकाशकम अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामयम पदम गच्छन्ति। तो पहले सत्वगुण भी अनामय है, अनामय में स्थित और अनामय पद को प्राप्त होगा। पहले कैसे हो जाएगा, अनामय पद को प्राप्त हो गया तो फिर साधन करने की क्या जरूरत रही। ऐसे कर्म निरपेक्ष सर्वथा हो गया तो कर्म की क्या जरूरत रही। लक्ष्य उद्देश्य वो चाहिए पहले, लक्ष्य वेदन है प्रणवोधनु सन्न प्रणवोधनु लक्ष्य आत्मा तो ब्रह्म तक लक्ष्य मुझे थे सरोधनु सर माना ब्रह्म तक लक्ष्य मुझे थे अप्रमृतन वेद बिम सर्वम तन्मय होवेत। तो लक्ष्य होता है वो कर्ण निरपेक्ष का नहीं, कर्ण का आग्रह होगा, कर्ण का त्याग नहीं कर सकेगा, कर्ण की सहायता बिना काम कर ही नहीं सकेगा। उसका त्याग कैसे करेगा, वो तो सहायक है। इस वास्ते तत्व कर्म निरपेक्ष है, ये खूब समझना है। तो कर्ण निरपेक्ष आदमी क्या, कर्ण की अपेक्षा हमें नहीं रखनी है। जूती पहननी है, जूती बूढ़े चूल्हे बस नहीं लगानी है, चलना है वहां तो चलेंगे, जूती जाएगी वहां जूती में चलेंगे, जूती में छोड़ कर गाड़ी चलेंगे। हमें तो बिना जूती जाना है, पर जहां तक कांटे है कंकर है कांकर है जो कुछ चुभता है उसका जूती पहनेंगे, वहां तक कर्णों की सहायता करेंगे। मन कर्णों की केवल सहायता लेनी है, कर्ण को सिर पर नहीं बांधना, जूती माथे पर बांधनी, चोर चलनी है। हम जहाँ है वहां से हम चलेंगे तो वहां सामग्री को लेकर चलेंगे, परंतु सामग्री का भरोसा साथ नहीं रखना है, ये पहले चाहिए। ना तो सामग्री को साथ रखना है, ना सामग्री को साथ लेना, ना सामग्री की सहायता लेनी है। ऐसे रहेंगे समय तब कर्म निरपेक्ष होगा। अच्छा, अब कर्म निरपेक्ष साधन कैसे होता है? सबसे पहले बात यह है कि हमें तत्व को जिसको प्राप्त करना है वो कर्म निरपेक्ष है, तो हमें कर्म निरपेक्ष होना है। कर्म निरपेक्ष नहीं हुए हैं तब तो है नहीं। इस वास्ते मैं कभी कभी कह देता हूँ कि जब तक आपके द्वारा पाप होता है, अन्याय होता है, तब तक आपका नाम साधन साधक है ही नहीं। जोर से कहता हूँ, तो फिर कैसे होगा भाई? पाप तो होता है, पाप होता है तो आप साधक नहीं है, क्योंकि पाप तो पापी से पापी होता है, उसकी पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, शुभ भी होता है, अशुभ कर्म होता है, आपसे दोनों होते रहेंगे। आप साधक कैसे हुए? साधक तभी होंगे जब आपके द्वारा पाप कोई नहीं होगा किसी तरह का, तब साधक होंगे। इसका अर्थ क्या है? क्या आरंभ में पाप रहते हो जाते हैं? उद्देश्य ये रखना चाहिए जब तक पाप हो कैसे हुए, जन्म जाए थे सूर्य, जन्म से सूर्य पैदा होता है, संस्कार से द्विज होता है और ब्रह्म जानना थी ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण कब होंगे हम पूरे से ब्रह्म को जान जाए? जब तक ब्रह्म को नहीं जान जाए तब तक ब्राह्मण नहीं। जन्मता जाए थे सूत्र, सूर्य पैदा होता है माँ बाप से, सूर्य यही पैदा होता है, संस्कारों से दूसरे दूजन्म हो जाता है। पहला जन्म माँ बाप से हुआ, फिर गुरु गायत्री से हुआ। इस वेद पाठ विप्र, विप्र कहने वेद पाठ होने से वेद पढ़ा ही नहीं, विप्र कैसे हुआ? और ब्रह्म को नहीं जाना ब्राह्मण कैसे हुआ? तो क्या वो शूद्र ही है सभी? उद्देश्य क्या कर ब्राह्मण पढ़ा प्राप्त करना है, पूर्ण ब्राह्मण बनना, हमें ब्रह्म जाना चाहिए, उसको जानना तो ब्रह्म है। पहले अपने ब्रह्म का अभिमान कभी न करे कि मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा अभिमान न करे, ये तात्पर्य होता है। तो ऐसे कर्ण निरपेक्ष हम चलेंगे तो कर्ण की अपेक्षा लेकर के कर्ण को लेकर ही चलेंगे। तो साधन में कर्ण निरपेक्ष सर्वथा आरंभ में नहीं होता है, परंतु कर्ण त्याजी है ये भाव पहले होने ही चाहिए, और ग्राह्य है ये होना होगा तो गुणातीत होगा ही नहीं, कर्ण साथ में रहेगा, कर्तृत्व भी साथ में नहीं रहता, कर्ण कैसे साथ रहेगा? कर्तृत्व को तो सहायक साधक तमम कर्णम, क्रिया सिद्धि के लिए अत्यंत उपकारी है उसका नाम कर्ण है। तो कर्ण निरपेक्ष क्यों कहा? कर्तृ निरपेक्ष है नहीं, अत्यंत उपकारक है, उसके भी निरपेक्ष होगा चलेगा। साधक तमम, साधकम नहीं, साधक तर नहीं, साधक तमम कर्णम अत्यंत है। किसकी? क्रिया की सिद्धि में। तो कारक होता क्रिया जनकत्व होगा, क्या क्रिया के द्वारा तत्व को प्राप्त कर लोगे? नहीं कर सकते, क्रिया के द्वारा प्रकृति में ही रहोगे, प्रकृति के द्वारा क्रिया ही होती है, सब कारक प्रकृति में ही है, प्रकृति से अतीत कारक नहीं है, कारक होगा वो प्रकृति से अतीत नहीं होगा, प्रकृति का कार्य है वो, कार्य कारण से अभी कैसे होगा? घटा मिट्टी का है तो मिट्टी से अलग कैसे हो जाएगा घड़ा? इस तरह से कर्म निरपेक्ष है, कर्तृत्व निरपेक्ष है, करते तो है ही नहीं। नान्यम गुणे बेकर्ता रम, कर्ता गुणों के सिवाय कोई हो नहीं सकता, गुणा गुणे सुवर्तंती मत्व न सज्जते। तो इस तरह से कर्ण से होता है, परंतु हमारा उद्देश्य कर्ण को साथ रखना नहीं है, ये उद्देश्य है। छूटता नहीं है तो करो आरूढ़ शोर कर्म कारण मुचते, जो आरूढ़ होना चाहता है उसके कर्म कारण है, जैसे जैसे कर्म करेगा तैसे निरपेक्ष होगा, तय कर करेगा, जो जो फल त्याग करेगा, आसक्ति त्याग करेगा, क्यों क्यों होते होते सर्वथा त्याग होने पर योग की सिद्धि हो जाएगी। परंतु पहले योग का आरंभ करते हुए भी योग में स्थित हो कर्म करो, क्षमता में स्थित रहो, तो स्थित रहो कर्तव्य ही कहा जाता है। जब समता में स्थित नहीं है, समता में स्थित है तो कहा जाता है तुम समता में स्थित रहो, योग में स्थित हो कर्म करो, समत्वम योग उचित समता का है, वहां पहुंचना है हमें, ऐसे गुणातीत तत्व को प्राप्त करना है, कर्ण निरपेक्ष तत्व को प्राप्त करना है। तो कर्ण की गरज नहीं रखनी है, कर्म का सहारा नहीं रखना है, कर्म के आश्रित नहीं रहता है, कर्म का शरणा नहीं लेना है कर्ण का, ये मतलब है इसका। अब इस संकोच इसी में हो तो इसी में ही पूछना, कोई पूछो पूछो। और कर्ण निर्देश तो आरंभ में ही कर्ण निर्देश होगा तभी कर्ण का त्याग करोगे, कर्ण निर्देश होगा कर्ण का त्याग कैसे करोगे आप बताओ?
कर्ण निर्देश होगा ना,
लक्ष्य होगा,
लक्ष्य तो कर्ण
निर्देश होगा, पहले होना चाहिए कर्ण निर्देश साधन हमारा, गुणातीत होना मेरा लक्षण है, तो मैं अन्य गुण ही करता रहूं, गुणों के सिवाय अन्य करता नहीं है, ये करोगे तब गुणातीत होंगे, नहीं तो गुणातीत कैसे होंगे? गुणों की आवश्यकता समझोगे तो गुणातीत हो भी सकोगे। स्वयं के द्वारा इस बार स्वयं गुणातीत है, हाँ जो गुणातीत है स्वयं, कर्ण निरपेक्ष है, कर्तृत्व रहित है।
यदि वो कर्ण के द्वारा उद्देश्य बनावेंगे तो वो तो कर्ण सापेक्ष हो जाएगा।
कर्ण सापेक्ष, कर्ण से छोड़ सकेगा नहीं, जिसके सहायता से साधन होता है उस सहायता का त्याग करेगा तो कृतज्ञ नहीं होगा। मेरे को पूछते जाओ, मैं कहता हूँ आप पूछो उतना ही विशेष विशुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, जो मेरे पीछे पड़ जाओ, श्वास मत रहने दो मेरे को, ऐसा तंग करो, एक घड़ी रीस कर दे तो छोड़ देना उस समय में, दूसरे पर फिर तंग करेंगे, हम तो करेंगे। हाँ तो टूट जाओ, जब टूट जाओ तो आप कैसे साधन करोगे?
आपकी बात की पुष्टि है।
तो पहले संस्कर्ष होते थके भी उद्देश्य का निरपेक्ष का बन गया, तो आखिर में कर्ण छूट गया।
हाँ छूटेगा, पहले से छोड़ना ही है। ग्रंथ मध्यस्थ्य, सुनो, ग्रंथ मध्यस्थ मेधावी विचार में मचारी पुनः पुनः पलाल धान्यार्थी तदे ग्रंथान शेषता। पहले बाजरा निकाले तो सिक्कियां इकट्ठी करके उस गाटा करे, कूट करके ठीक तरह से करे, फिर ऊपर धान निकाल ले, और निकालना पर चूसा कूटे कूटे पीछे पकड़ में, तो जो आप पूछोगे मेरे को तंग करोगे जो पकड़ में ज्यादा आएगी, ऐसा तंग कर लो जवाब नहीं आया मेरे को, ऐसा प्रश्न करो आप, जो विषय बहुत खुलेगा विषय। जैसे अभी मैंने सुना कि गुणातीत क्या है, वो गुण निरपेक्ष कैसे होगा, कर्ण का निरपेक्ष कैसे होगा, साधन कैसे होगा, ठीक विशेष विरोध नहीं हुआ। मैं देखता हूँ तो इस हो गया कोई 20-25 मिनट हो गया, 10 मिनट ऊपर करता हूँ मैं, आध घंटा पहले वो 10 मिनट तक मैं बोलता हूँ, आज 20 मिनट हो गए बोलते बोलते, तब तो उनको उपसंहार किया, उसमें तो ज्यादा बोल गया। फिर भी इस विषय में शंका होती, इसी विषय में हो तो अभी बोलो।
कर्ण निरपेक्ष तत्व को प्राप्त करना है, ऐसा उद्देश्य बुद्धि को लेकर होता है या कैसे?
बुद्धि को लेकर के, बुद्धि को लेकर ही होगा। जूती पहरे तो जूती को लेकर ही पहरेगे, जूती के बिना जूती कैसे पहरेगे? वे भाई बोले तो इस विषय को समझते हैं, बिना समझ बोले उठ पटांग बैठेगी नहीं। निष्काम कर्म करो, तो निष्काम कर्म भाव वे बिना कैसे करेगा? उद्देश्य निष्काम पहले बनेगा, करते कर आरूढ़ मुनि योग, मुनि जो योग में आरूढ़ होना चाहे, कर्म कारण है उसके, योगारूढ़ जी वो योगारूढ़ हो जाएगा तो उसकी शांति परमात्मा में प्राथमिक कारण हो गई। हिदाय नेन्द्रियार्थे न कर्म सु अनुसद्ध थे सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ योगारूढ़ होगा, योगारूढ़ से तस्व समय उसकी शांति वो परमात्मा की प्राथमिक कारण है। शांति कारण बताने का, शांति में रमण करोगे, शांति को अच्छी मानोगे या पकड़ोगे तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो शांति तो परमात्मा की प्राथमिक कारण है, तो कारण तो कर्ण निरपेक्ष ही हुआ।
उद्देश्य बिना वस्तु मिले कौन
है जी?
पहले उद्देश्य जैसे वेदांत ग्रंथों में आ गए, उपकर्म उपख्या आदि में हुआ है, अंत में होती है,
वही अंत में होती है।
आप बात समझ पाई, इतना दिन 20 वर्ष नहीं 10 वर्ष हो गया मेरे समझ पाई आपकी बात, आज मेरे पकड़ पाई आप।
आज तो मैंने आप बात कही कि सुबह आपने कहा कर्ण निरपेक्ष साधन कैसे हुआ समझे नहीं, तो मैं मेरे को पूछो समझाओ, मेरे समझाने का उत्साह बहुत है, मैं समझा सकूंगा ऐसी तो मेरी हिम्मत टूट गई है। पहले तो मेरी हिम्मत थी कि मैं समझा दूंगा, कोई समझना चाहे, मैं जो समझ गया हूँ वो समझाना मैं कठिन समझता ही नहीं, पर तो मैंने जोर लगाया न भी समझा सका, तो उस दिन से समझा नहीं सकूंगा। विवेचन करने की अभी तक हिम्मत है मेरी वैसे की वैसी, उसमें का फर्क नहीं है, मैं समझा दूंगा ये हिम्मत नहीं है।
कर्ण सापेक्षवादियों का एक ये तर्क है कि मूर्छा में और सुषुप्ति में जहाँ कर्ण काम नहीं करते हैं, क्या उस अवस्था में साधन संभव है?
हाँ, साधन नहीं है उसमें।
तो साधन नहीं है तो फिर कर्ण सापेक्ष ही बात हुई?
नहीं, कर्ण साधन नहीं है उसमें, साधन कर्ण है ही नहीं तो कर्ण का लाभ कैसा होगा? माल पर जगात होती है, माल है ही नहीं तो माल जगात किसकी? जहाँ कर्ण लीन हो गए वहाँ कर्ण के साधन कैसे?
वह कर्ण का जहाँ लीन हो गया तो फिर साधन तो रहना चाहिए ना, कर्ण निर्गुण
साधन तो रहेगा ही,
तो मूर्छा में सुसुप्ति में कैसे साधन होता है?
साधन कैसे होता है? वो कर्ण निरपेक्ष पहले से किया है। देखो एक सिद्धांत है, मूर्छा आते हुए नींद आते हुए जो स्थिति होती है उसी में नींद जगती है, उसी मूर्छा उसी में जगती है। इस वास्ते कोई मूर्छित हो जाए तो मूर्छा के आरंभ में क्या था उसी में, मूर्छा के आरंभ में उसी में जगेगा वो।
तो मूर्छा और सुषुप्ति तो बुद्धि की हुई।
हाँ, बुद्धि की हुई।
तो बुद्धि की हुई तो उस समय बुद्धि काम नहीं करती, तब भी साधन तो हमारा जबकि वो कर्ण निरपेक्ष है।
हाँ, हाँ।
चलते रहना चाहिए।
चलता है वो तो बिल्कुल चलेगा ही।
वो कैसे चलता है?
कैसे नहीं चलता, कैसे नहीं होता, कैसे मत कर्ण होता है, कैसे नहीं होता है? मन कर्ण नहीं है ये निश्चय सुसुप्ति में रहता है, कर्ण की अपेक्षा नहीं है ये सुसुप्ति में जागृत में स्वप्न में हर समय रहता है, कर्ण वहां पहुंचता ही नहीं है, कर्ण कर्तृत्व अतीत तत्व है ये जागृत में हो उनके सुसुप्ति में जाता है तब ये बात उसकी रहती है, उसी में उस सुसुप्ति में रहता है। सुसुप्ति में रहते हुए कर्ण सापेक्ष ये रहेगा क्या? आप बताओ, कर्ण वाले बता दो, आ जाओ मेरे सामने, करो वो हाथ मेरे से आओ, जो कर्ण सापेक्ष मानता है उसमें सुसुप्ति में कर्ण रहता है क्या? बताओ, कर्ण निरपेक्ष क्यों, कर्ण सापेक्ष बताओ।
बात तो इसलिए सिद्ध हो जाती है कि कर्ण सापेक्ष है ना, तो उस समय कर्ण है नहीं तो साधन भी नहीं है।
हम साधन भी नहीं है तो हम कौन से कहते हैं? हम कहते हैं साधन करता है वो, सोता है वो, साधन करता नहीं है, सिद्धांत ऐसा अटल रहता है, सुसुप्ति आ जाए, स्वप्न आ जाए, जागृत आ जाए, मूर्छ आ जाए, मूर्छ हो विकल मूर्छ हुआ विलसन भूवि प्राणा स्तर से तस्य मुक्ति न संशय संशय नहीं है, पंचदशी में साफ देखा है। ये लोट वोट करता होगा तो ज्ञान है जो कहते रहता है।
सुसुप्ति का साक्षी फिर कैसे बनता है?
साक्षी बनता है, साक्षी तो पीछे कहते हैं साक्षी बनता है, सुसुप्ति में नहीं कह सकते, सुसुप्ति में कुछ कह सकते ही नहीं, कर्ण सापेक्ष वाला भी सुसुप्ति में कर्ण सापेक्ष नहीं रह सकता, कर्ण लीन हो जाता कैसे सापेक्ष रहेगा? कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष दोनों रहेंगे नहीं, वो तो कर्ण लीन हो जाते हैं। परंतु एक बात विलक्षण है इसमें और समझना है, आप पूछोगे तो विलक्षण विलक्षण रास्ते निकलेगी, मेरे ये विश्वास है, मैं जानता हूँ बड़ा भाई ये अभिमान को मैं रखता नहीं हूँ, कहता भी नहीं हूँ कि मेरा अनुभव है मैं करूंगा, परंतु तर्क करोगे तो उसका उत्तर मेरे उत्पन्न होता है। अब बात बताऊ एक विलक्षण बात अच्छे से, उसमें बताया है कि दुर्बलत्वाद अविद्याया, अविद्या तो है दुर्बल, और आत्मत्वाद बोध रूप ही ना, आत्मा है बोध रूप, दुर्बल है अविद्या, विद्वस्तम मोहन था मोहन स्वरूप हम जानते हैं, दुर्बलत्वाद अविद्याया आत्मत्वाद बोध रूप ही ना, विध्वस्त मोहांत एक स्वर्ण याद ही रहा, मानो आत्मा तो सदा बोध रूप है और अविद्या वो सदैव रहती है परंतु दुर्बल है, बोध सबल है, तो उसमें क्या है कि हम खूब गाढ़ नींद में सोए हैं तो सोए हुए को जो जगाता है उसका नाम लेता है, तो शब्द से तेरे चिंतित्वात पूरा आ गया, दुर्बलत्वाद अविद्या आत्मत्वाद बोध रूपिणा शब्द शक्ति अचिंत्यत्वाद शब्द में शक्ति अचिंत्य है। अचिंत कैसे माने कि सोते हुए आदमी कोई नाम ले तो वो जग जाता है, दूसरे नहीं जगते उस नाम ले जगता है। तो शब्द में अचिंत शक्ति है कि बूढ़ से हम पड़े वो को खेस कर जाती है शब्द, ऐसे शब्द में शक्ति है। तब शब्द में मस्तम पर मोह हानता, मोह की हानि होने से उस पर हम जानते हैं क्या होता है, मोह की हानि होती है, ज्ञान नहीं होता। इसलिए और सूक्ष्म में करने की अपेक्षा भी एक बात सूक्ष्म में और क्या, अज्ञान है नहीं, ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान किसी को नहीं हुआ। क्यों अज्ञानी को तो ज्ञान नहीं है, अज्ञानी में ज्ञान नहीं है, अभिमान नहीं, ज्ञान मेरा ज्ञान है मैं ज्ञानी हूँ ये अभिमान नहीं है, अभिमान है तो महान अज्ञानी है। तो बात क्या है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों अज्ञानी की कल्पना में है, ज्ञानी के ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है। शब्द शक्ति अचिंत्यत्व शब्द में अचिंत्य शक्ति है, जैसे नींद में सोता हुआ नाम लेने से जग जाता है, ऐसे मोह में पड़ा हुआ उपदेश से जग जाता है, वो स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है उसको। शब्द में अचिंत्य शक्ति मानी, शब्द में अचिंत्य शक्ति है, जिसमें भी कौन के जिसके अनुभव है उसके शब्द में बड़ी भारी ताकत है। हर एक शब्द में ताकत नहीं है, समस्त आगले संत का हरिया हस्ती दंत ताखन टूटे भ्रम का बिन सहदे ही बिन संत। एक कहानी आता है कि राजा ने, ध्यान से सुनना भाई, राजा ने कई राजाओं पर विजय करी और फिर आए तो बहुत फौज मारी गई, हाथी मारे गए, फिर वो आया फौज यहाँ आए जितने दरवाजा हो गया बंद किला का, खोलो नहीं खुल सकता, कि राजा कहते हैं खुद कि राजा को कोई को खुद नहीं खुल सकता, 4 बजे खुलेगा पहले कैसे खुल जाएगा। बहुत किया कि चाबी नहीं है सर, चाबी तो कोतवाल चली गई, अब तारा मरा हुआ है कैसे खोलते हैं हम, वो ऐसे बोलते हैं वो कर खोलो राजा साहब दरबार खुद गया, कि दरबार का कदा कायदा दरबार भी नहीं मेटा सकते, पहले आपने कहा सर नहीं खुलता अभी। तो कह रहे कि दूसरे राजाओं में गए उसको विजय करी, उन तो कहा दरवाजा खोला है क्या, दरवाजा थोड़ी खोला उन्होंने, तो दरवाजा कैसे हुआ कि हाथी का दांत तुम्हारा जो तोड़ दिया एकदम ही दरवाजों को ही, तो अभी हाथी का दांत नहीं है कि दांत तो है मुंह जो हाथ में है सर, हम तोड़ो तोड़ देगा वो तो हाथी के लगा हुआ दांत ही तोड़ता है, यूं दांत तोड़ देगा। ऐसे अनुभवी पुरुष है जिसके लगा हुआ शब्द है वो शब्द जितना वेदन करता है वो शब्द के ना लेकर आपको वेदन नहीं करेगा। वचन अगले संत का हरिया हस्ती दंत ताकन टूटे भ्रम का सेंदे ही बिन सेंद, सेंदे ही बिना ताक नहीं टूटता, केवल शब्दों के कहने से क्या होता है, उस जिसके लगा हुआ है ठीक तरह अनुभवी है, चोट लगती है जिस बंदूक में गोली होती है उसी चोट लगती है छेद कर देती है, गोली में कोला बार भाग बोलेगा लगे क्या, ऐसे अनुभव के बिना बात करते करने ही बिना कथ नहीं करेगा। अज्ञान दिन रात कुकुर जो पूछता बिना सुनाई सुनाई बात उसे क्या होता है। बसन आगे संत का हरिया हस्ती दंत पर संदेह ही बने संत ताकत टूटे भ्रम का, भ्रम टूटता नहीं है संदेह ही बिना, बिना संदेह ही बिना, अरे संदेह तो लगे हाथी दांत लगे रो हाथी वहां फट तोड़ दे सबको तोड़ दे, दरवाजे के सामने खिला लगा देता है उनके ऊपर ढाल लगा करके फिर हस्ती को मारते है अंकुश, वो जोर से मारता है दांत तोड़ तोड़ देता है, शिलाओं तोड़ दे बड़ी बड़ी शिलाओं हाथी तोड़ देता है दांत से, परंतु हाथी लगा हुआ दांत तोड़ दे वो हाथी दांत हाथ में ले लो तोड़ो टूट जाएगा।
आप बता रहे थे शब्द शक्ति अचिंत्यत्व,
हाँ शब्द में अचिंत्य शक्ति है, उसमें शक्ति आप बता नहीं सकती है, शब्द में कितनी शक्ति है, अनंत शक्ति है, कैसा ही क्यों ना जब नींद सोता वो नाम लेते ही सजोत होता, नींद में सोता नाम लो जग जाएगा। तो क्या है, कान है वो तो गए मन में, मन लीन हो गया बुद्धि में, बुद्धि लीन हो गई अहम में, अहम लीन हो गया अविद्या में, इतना लीन है कान, वो कान में अत्यंत शक्ति है शब्द में, उस कान को सजा देता है, कान को कर करके मन को और बुद्धि को अहम को मिटा कर ठेठ कान तक सब पहुंच देता है। क्या क्या क्यों पहुंच जाता है कि शब्द शक्ति अचिंत्य शब्द में अचिंत शक्ति है। अब गाना बजाना कैसे सीख जाओगे, नाम कैसे सीख जाओगे, विद्या कैसे सीख जाओगे, शब्द में अचिंत शक्ति के बिना कैसे हो जाएगा। शब्द में अचिंत शक्ति है, अपढ़ भी पढ़ जाता है, नहीं जानने वाले जानने लग जाता है। तो शब्द में अत्यंत शक्ति अत्यंत अचिंत शक्ति है, अनंत शक्ति है, अचिंत शक्ति है। वो सीख अनुभव के आता है जो महाराज भेद कर देता है एकदम, वही शब्द को बिना अनुभव के बोलो हाथी लाते मूठ मारो के टूट जाएगा। तो शब्द में अचिंत शक्ति है, जिसमें मूर्छित हुए कान और मन और बुद्धि और अहंकार सब अविद्या में लीन हो गए। लीन अविद्या में कान को शब्द फट जगा देता है, कान पहुंच करके इतनी शब्द में अचिंत शक्ति है।
वो पहले कान को करता है या पहले अविद्या को दूर करता है वो शब्द?
वो शब्द पहले कान को जागृत कर, कान में तो कान में जाने के लिए अविद्या अहंकार और मन बाधा नहीं दे सकते। इसी अचिंत शक्ति का काम है शब्द में, ये बाधा नहीं दे सकते, फिर कान तक पहुंच जाता है धीरे से काम में। जो नाम है उसका नाम लग जाता है आदमी, तो वहां तक पहुंचता है शब्द। ऐसे वो जो शब्द जाग जाता है तो जाग जाता है, जिस नाम को लिया उस नाम में जागेगा, पर नाम रहित है वो नाम रहित जाग जाएगा। तत्व नहीं है वहां, कर्म निरपेक्ष है, तो कर्म निरपेक्ष तत्व को जाग जाएगा, अनुभव हो जाएगा उसको। अनुभवी पुरुष के सामने आना चाहिए, अनुभवी पुरुष के बिना नहीं होता, बरसों तक मेहनत करो नहीं होगा उसकी प्राप्ति जल्दी।
निरपेक्ष वाले विवेचन में शब्द शक्ति रचिंत का आपको कहने का क्या भाव था?
इनमें कहने का भाव था कि शब्द में अचिंत शक्ति है, उस अचिंत शक्ति से जाग जाता है मनुष्य सोता हुआ नींद में से, ऐसे अज्ञान रूपी निद्रा में सोता हुआ जीव शब्द में अचिंत शक्ति वो जाग जाता है, उसको बोध हो जाता है ये शब्द अचिंत शक्ति है।
बोधवान के शब्द से
हाँ उसको अनुभव हो, कह रहे अनुभव नहीं हो कैसे सीख जाएगा। करने कथनी करनी बिन कथनी कथे अज्ञान दिन रात, कुकर जो भूसता मेरे सुने सुनाई बात, कुत्ता एक भूसेगा तो उस मोहल्ले में भूसा, उस मोहल्ले में भूसा, उसको पूछे तुम किसको भूसते हो, क्या पता नहीं पूछता है तो किसी को देखकर पूछता है, वो भूसा सुनकर वही भूसने लग गया, वही भूसने लग गया, वही भूसने लग गया, ऐसे कहता सुना तो वही कह सब उसको कहने लग गए, वैसे क्या होगा, सुनी सुनाई बात। अनुभव की बात विचित्र होती है, उसी की बात में नहीं होती, उसी शक्ति नहीं होती। अच्छा है भगवत चर्चा हो जाए फालतू अच्छा है, परंतु बोध दूर हो जाए, अज्ञान दूर हो गए बोध में आ जाए ये नहीं होता है। अनुभव शक्ति में महाराज सब चोट लगती है, प्राग आंखा खुल जाती है, अरे बात होता नहीं तो सीधी बात है, सरल बात ऐसा अनुभव होता है। कठिन कठिन है ही नहीं, कठिन क्या बात है, वो तो है जो बोध होता है। संसारी काम तो करने से होता है, करने में कर्ता कर्म करने आदि करने से होता है, जो करना नहीं है वो तो प्राप्त करना है, नित्य प्राप्ति को प्राप्त है। विचार सागर में आया है कि नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति में सागर की क्या जरूरत है बताओ आप भी, केवल प्राप्ति का भ्रम है उसको दूर करना है, वो तो जगह है जो नहीं भ्रम है आपने बनाया हुआ है, आप छोड़ दो छूट जाएगा।
ये बात बड़ी आती है, बैठी है बात नहीं
बैठी। मैं तो उदाहरण देवता से तो गीता जी का भक्ति का साधन से भक्ति में अंत होगा, विवेक का साधन कर विवेक में अंत होगा, निष्काम भाव साधन हो निष्काम भाव में अंत होगा, ध्यान का आचरण करे तो पहले ध्यान का ही चिंतन होगा तो ध्यान में ही अंत होगा, जिसने साधन शुरू होगा उसी समाप्ति होगी उसी में ही। तो वो अभ्यास और अपूर्वता फलम अपूर्वता कहते हैं इसमें,
उद्देश्य बढ़ गया है
तो वही पूर्ण होता है। वहीं पर उठ जाएगा, पूर्णता हो जाएगी उसमें।
पहले छिपा हुआ जड़ इस बकेट में लेकर
उपक्रमोपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम क्या है? अभ्यास अपूर्वता फलम लिंगं तात्पर्य निर्णय तीसरा चरण भूल गए। तात्पर्य निर्णय में षडलिंग है, षडलिंग संग्रह उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम। अब बोलो अभ्यास हो अपूर्वता फल
और फल चार और अपने
अर्थवाद उत्पत्ति से अर्थवाद उत्पत्ति भी हुए अब हो गया अभ्यास पहले छह लिंग है। छह लिंगों में क्या है कि आरंभ उपक्रम उपसंहार और अभ्यास अपूर्वता फल और अर्थापति उपपत्ति अर्थापति उपपत्ति से लिंगन तात्पर्य निर्णय है। तात्पर्य निर्णय के लिए करना पड़ेगा षडलिंग अपने दर्पण में दिया है, गीता दर्पण में भी से दिया है, बहुत दिया है दर्पण में, गीता दर्पण में दर्पण भी से जो गीता दी गई हो सब साफ साफ मनन करो। तो कर्म निरपेक्ष उद्देश्य होता है, निष्काम का उद्देश्य होता है, उद्देश्य होता है, धन का उद्देश्य होता है, धन मिल जाता है व्यापार करे धन मिल जाता है, खेती करने का उद्देश्य होता है, उद्देश्य पहले होता है फिर क्रिया होती है फिर उद्देश्य की सिद्धि होती है, उसी में ही चलेगा। उपक्रम होगा जो उपसंहार होगा, अभ्यास बार बार होगा, अपूर्वता उसे विलक्षणता बताई जाएगी और फल उसी में होगा, अर्थवाद उत्पत्ति युक्तियां से उसी में होगा। ये लिंग तात्पर्य निर्णय
बिल्कुल ठीक
है।
आज विशेष समझ में आया नहीं तो समझ में नहीं आता।
आप पूछ देने में कितनी बार कहता हूँ आप पूछो तो विषय बहुत खुलेगा, बात स्पष्ट होगा। मेरे को क्या पता कौन बात किस विषय को नहीं समझा है, वो पूछेगा तो पता नहीं इस विषय में यहाँ गांठ है इसके, मेरे को पता लग जाएगा ग्रंथी का, नहीं तो क्या पता लगे। कहने में तो मैंने कह दिया, मैंने अपनी तरफ से त्रुटि रखी नहीं पर उससे पूर्ति होती नहीं, क्योंकि आपके कहाँ त्रुटि मेरे को क्या पता, अंतरिय मत में हूँ नहीं। हाँ जन्म ये बात है। तो अचिंत का और कर्ण निरपेक्ष का उद्देश्य पहले होना चाहिए कि कर्ण साथ में नहीं रहेगा, कर्ण रहित रहेगा, इस बात से कर्ण निरपेक्ष तत्व है तो कर्ण को लेना नहीं है साथ में, कर्ण का त्याग करना है। झाड़ू होता है वो झाड़ू मकान को साफ करता है, तो झाड़ू जिस जात का है उसी जात का कूड़ा करकट है और उसी जात से झाड़ू से दूर कर देते हैं, मकान है जो रह जाता है, मकान को पैर नहीं करता झाड़ू, झाड़ू दोनों को साफ पूरा कट कर दूर कर देगा, मकान है जो रह जाएगा। ऐसे बुद्धि के द्वारा कर्णों के द्वारा जो उसी बिघन बाधा है वो हटा दोगे, है जो रह जाएगा। है जो प्राप्ति झाड़ू से होती है, कोई झाड़ू से निर्माण होता है छत का, सब का त्याग करना ही है। झाड़ू तो कूड़े कटकट के लिए है, उस जाति का है कूड़ा कट के, जिस जाति के उस जाति के झाड़ू उससे उसको दूर कर देगा वह है जो रह जाएगा। कर्ण जिस जाति का उसी कर्ण का विघ्न है, उसी बाधा है, उसको दूर करने पर है जो रहेगा। तो तत्व की प्राप्ति तो कर्ण से थोड़ी हुई, कर्ण से तो बीच में जो बाधा है वो दूर कर दो फिर प्राप्ति हो जाएगी। पहले से कर्ण का सहारा नहीं ले तो तत्काल प्राप्ति हो जाती है, क्यों तत्व है। मैं पूछता हूं आपको बेटा, कोई भाई समझ करके बोले, ऐसे उठपटांग नहीं, समझ कर बोले मैं हूं, इस होनापन में कौन सा कारण है जिसको आप जानते हो बताओ, कोई बताओ पढ़ा लिखा। मैं हूं इसमें अपनी सत्ता में कौन सा कारण है, अपना होना अपना कारण है, कोई मन है बुद्धि है इंद्रिया है कर्मेंद्रिया है ज्ञान इंद्रिया क्या है।
ये कारण से ही सिद्ध होता है,
हाँ जी
सिद्ध है, जिसको कारण क्या है,
स्थिति से अपना होना पर तो सत्ता सत्ता से जय सत्ता के लिए करण की जरूरत नहीं है। सत्ता को नहीं पहचाना उस वास्ते करण है। मैं हूं इसमें करण बताओ, कोई कोई नहीं बता सकते। अपनी स्वतः स्वतः अपने अपनी सत्ता स्थित है। तो आपकी जीवात्मा हो आप जिसमें स्वतः स्थित सत्ता है, ब्रह्म इतना ही कमजोर है आपसे जो स्वतः सिद्ध नहीं है, जो कर्ण से जागृत होगा। कर्ण प्रकृति का कार्य, प्रकृति से अतीत तत्व, उसको कर्ण की जरूरत हो गई। आप बढ़िया से बढ़िया शंका करो तो बढ़िया से बढ़िया उत्तर दूंगा। मेरे को वरदान मिला हुआ है। महात्मा कहा हुआ है कि सातवीं भूमि की पूछ लो, स्वामी जी बता देंगे। पूछ कर देखो, आप परीक्षा कर देखो। जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए, तमाशा नहीं, परीक्षा नहीं, खेल तमाशा नहीं। असली आपकी जिज्ञासा करो देखो। तो पूछो, भूख कमी है जो हम क्या करें बोलो। अरे भूख की कमी है, माया क्या करेगी? ये रोटी बना देगी, दाल बना देगी, भात बना देगी, हलवा पूरी बना देगी, लड्डू बना देगी, जलेबी दे देगी, मैं भूख बना देगी है किसी की तरह? बताओ मेरे को भूख लगा दे कोई। भूख तो घर की चाहिए और सामग्री तो बता दे माया, हम बना देंगे। आप कौन सी रोटी बना दे, कौन जैसी दाल बना दे, भूख बना दोगे? भूख तो घर की घर चाहिए, घर घर चाहिए, तो खास अपनी तो सामग्री तैयार है। सामग्री में कमी है ही नहीं। सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक है सोई अटक रहा। अटक ही नहीं, क्यों चाहता है परमात्मा की चाहना है। और चाह न मिटा दो, एक चाह न रखो, आप सब बोल देगा तो स्वयं योग संस्कृति कालीनाथ में अंदर थी, तत्काल प्राप्ति हो जाती है। क्यों चाहना चाहिए? गुरु को जिद गुरु मिल जाएगा, ग्रंथ चाहे ग्रंथ मिल जाएगा, कोई मत मिलो बोध हो जाएगा। आपकी जिज्ञासा है, परमात्मा जिज्ञासा की पूर्ति करते हैं। पालन शक्ति है तो पालन दुनिया कैसे करे? जिज्ञासु का पालन नहीं करेंगे क्या? मुमुक्ष का पालन नहीं करेंगे वे? मुमुक्ष का जिज्ञासु पालन क्या रोटी दाल रोटी से हो जाएगा? ऐसी बात है। अब मनन करो, मनन मनन करके फिर करो शंका, फिर पूछो। अभी एक भाई ने पूछा ऐसा कि भाई कर्ण निर्पेक्ष साधन समझ में आया, तत्व तो कर्ण निर्पेक्ष समझ में आया, साधन समझ में नहीं आया। तो साधन उद्देश्य होता है तब साधन होता है, अरे तो प्राप्ति हो जाती है, सिद्ध हो जाता है। तो पहले से कर्ण निर्पेक्ष का उद्देश्य होना चाहिए, कर्ण की कोई जरूरत, बिना कर्ण के उसको बोध होता है। तो कर्ण की त्यागना करना ही पड़े, नहीं तो कर्ण को साथ लिए हो ही नहीं सकता। कर्ण को साथ लिए बोध कैसे होगा? जड़ को साथ लिए भी ना शरीर मैं हूं, ना शरीर मेरा है, ना मेरे लिए शरीर की जरूरत है, ना सूक्ष्म ना कारण का नाम सूक्ष्म कारण ना सूक्ष्म, मेरे लिए जरूरत नहीं है। मेरा मेरा स्वरूप तो परमात्मा के साथ एक है, इसलिए क्या जरूरत है करण की? क्या कर्ता की जरूरत है? क्या करण की, क्या संप्रदान की, क्या अधिकरण की, किसकी जरूरत है? ये तो सब प्रकृति में होगा, प्रकृति से अतीत तो जा ही नहीं सके। प्रकृति से अतीत कोई जाएगा? कारण कर्ता कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण कैसे जाएगा? जय सीता राम, सीता राम, सीता राम।